ओम शांति। राजयोग की सरल विधि आप सबने सीख ली है। पिता परमात्मा की याद के लिए या उसकी याद में मन लगाने के लिए कोई कठिन क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है या कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है। दो मूल बातें आपने समझ ली हैं कि योग अभ्यास करने वाली मैं स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं और जिस पिता परमात्मा से हमें मन और बुद्धि लगाने हैं वो पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप परम चैतन्य शक्ति है। तो न मैं भौतिक हूं न परमात्मा भौतिक है, वो भी अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति है और मैं भी अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हूं। तो अंडरस्टूड है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कनेक्शन या कॉन्टेक्ट कोई भौतिक साधन से नहीं हो सकता है या कोई प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। आत्मा का परमात्मा से संपर्क मिलन मन और बुद्धि से ही हो सकता है, इसलिए परमात्मा की याद में हमें मन लगाना है, बुद्धि लगानी है। इसलिए गीता में भी कहा गया है कि मन मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ, मामेव बुद्धि निवेश्य, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। वो मन और बुद्धि हम कहीं और लगाकर बैठे हैं और फिर परमात्मा की याद के लिए हम साधन लगाते हैं, क्रियाएं करते हैं। इसलिए राजयोग के अभ्यास में ना कोई शारीरिक हठ क्रियाएं हैं और ना ही कोई औपचारिक क्रियाएं हैं। आपने समझ लिया है कि जब भी परमात्मा की याद में हम बैठे, योग अभ्यास करने बैठे, तो हम अपनी सहज स्थिति में बैठ जाएं। कोई आसन लगाने की, प्राणायाम चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए, अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो भल करें, वो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। लेकिन जहां तक मन बुद्धि परमात्मा में लगाने की बात है, इसमें कोई हट क्रिया की आवश्यकता नहीं। अपनी सहज स्थिति में बैठना है, फिजिकली रिलैक्स बैठना है, लेकिन मन से अटेंटिव बैठना है। उस अटेंशन में बैठना है कि ये आधा घंटा, ये एक घंटा, ये 15 मिनट मैं परमात्मा की याद के लिए बैठा। आप अपने कारोबार ड्यूटी को देखते हुए जब भी आप अन्य कार्यों से फ्री हैं, लक्ष्य पूर्वक योग अभ्यास के लिए बैठे कि और सभी बातें सोचने के लिए हमारे पास बाकी के 22 घंटे हैं, 23 घंटे हैं, सिर्फ ये 10 मिनट, ये आधा घंटा, ये एक घंटा स्वचिंतन, परमात्मा चिंतन के लिए है, तो मुझे अभी और बातें नहीं सोचनी है। उस अटेंशन से बैठे। इसमें ना हमें कुछ रटना है, ना जपना है, जैसा कि अब तक हम करते रहे हैं। कोई माला फेरते हैं, कोई मंत्र रटते हैं, कोई मुख से भजन गाते हैं, परमात्मा की याद में बैठने के लिए औपचारिक क्रियाओं की आवश्यकता नहीं। न माला फेरना है, न मंत्र रटना है। हमें अनुभव है भक्ति में भी कि माला फेरते हैं, मन भी फिरता रहता है। मंत्र रटते रहते हैं, मन भी भटकता रहता है। इसलिए ज्ञानी भक्तों ने भी स्वयं कहा है, कबीर जी ने भी कहा है कि कर के मन के छोड़कर मन का फेर। मन परिवर्तन करना है। जो मन बहिर्मुखी बन गया है, बॉडी कॉन्शियस बन गया है, उस मन को अंतर्मुखी बनाना है, स्वचिंतन, परमात्मा चिंतन में लगाना है। रटना, जपना, ये औपचारिक क्रियाएं अभ्यास हो जाने के बाद वो क्रियाएं यांत्रिक बन जाती है। व्यक्ति मंत्र रटता रहेगा और मन भटकता रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि राजयोग के अभ्यास में कोई शब्द मंत्र नहीं है। ईश्वर के प्रेम रूपी मंत्र में जो मुग्ध हो जाते हैं, उसकी लगन जिसको लगती है, उसे शब्द मंत्र की आवश्यकता नहीं है। बेहतर ये है कि मंत्र के अर्थ में स्थित हो जाए। हमें मंत्र के अर्थ को जीवन में धारण करना है। जैसे ओम शांति, तो कोई ओम शांति रटना नहीं है, लेकिन मुझे शांति की स्थिति में स्थित होना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ओम मीन्स मैं आत्मा और शांति मेरा स्वधर्म। हम मुख से ओम नमो शिवाय रटते हैं, हाथ से नमन करते हैं, लेकिन सारा दिन फिर हम उस शिव की आज्ञा पर चलते नहीं हैं, तो केवल मुख से नमन कह देना या हाथ जोड़ देना, इससे बेहतर ये है कि अगर हमें परमात्मा के प्रति सच्चा प्यार है, रिस्पेक्ट है, हमारा उनके प्रति समर्पण है, तो हम उसकी आज्ञा पर चलें। जैसे आपका बेटा रोज सुबह उठकर आपको पांव पड़े, हाथ लगे, नमन करे, लेकिन आपकी एक भी बात माने नहीं, तो आप उससे क्या कहेंगे कि भाई ये औपचारिकता दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जो अच्छी बात कहता हूं वो तुम मानो, मेरी अच्छाइयों को धारण करो, मेरे सही कार्यों में मदद करो, तो परमात्मा के प्रति हमें प्यार है, लगन है, समर्पण की भावना है, तो हम उसकी आज्ञा पर चले, हम उनके गुणों को जीवन में धारण करें, उनके जैसे कल्याणकारी कार्य करें, वो हमारा सच्चा प्यार है। इसलिए हमें मंत्र के अर्थ को जीवन में धारण करना है, न कि केवल वो शब्द रटने हैं, और ना ही हमें मुख से कोई आवाज करना है। कोई जोर जोर से भजन गाते हैं, कोई जोर जोर से पुकारते हैं, हमें मुख से आवाज नहीं करना है। हम सब जानते हैं कि परमात्मा को मुख का आवाज नहीं पहुंचता है, उसे अंतर का आवाज पहुंचता है, दिल का प्यार परमात्मा को पहुंचता है। हम अपने आपस के इंसानी रिश्तों में भी अनुभव करते हैं, कोई ऊपर ऊपर से हमें कितना भी कहे, आप आइए हमारे घर पधारिए, हम कहते हैं कि सचमुच दिल से कह रहे हो या ऊपर ऊपर से निमंत्रण दे रहे हो। हमें भी दिल का कहा हुआ दिल को टच होता है, तो परमात्मा को भी दिल का प्यार पहुंचता है, अंतर का आवाज पहुंचता है। इसलिए आरती का सही अर्थ भी यही है, आर्त वाणी, अंतर की वाणी से याद करना है। वो मन का प्यार, दिल की आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचा सके, इसलिए हम मुख से गाने लगे। राजयोग के अभ्यास में हम साइलेंस में बैठते और मन ही मन उस पिता को याद करते। इसलिए हमें पिता परमात्मा कहते हैं कि योग योग शब्द नहीं कहो। योग समझेंगे कोई एक्सरसाइज करनी है, कुछ रटना है, कुछ जपना है। सहज शब्द बताइए, याद करना है, परमात्मा को याद करना है। और याद करना हमारा नेचर है, मनुष्य का स्वभाव है याद करना। हम किसी न किसी को याद करते ही रहते। मित्रों को, संबंधियों को, सुख की बातों को, दुख की बातों को, प्राप्ति के प्रसंग को, हमें कोई ना कोई की याद सदा आती ही रहती। अनेक यादों के, अनेक अनुभवों का सार क्या है? हम अनेक मित्र संबंधियों को याद करते रहते हैं, जीवन के अनेक बातों को याद करते हैं, लेकिन उसका सार क्या हम निकालेंगे? कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु की याद सदा सुख देने वाली नहीं। आज जिस व्यक्ति से मुझे प्यार है, उनसे मुझे बहुत सुख मिलता है, मैं उस व्यक्ति को अपना सब कुछ समझ रही, उसकी याद में मुझे बहुत आनंद आता है, लेकिन कल वही व्यक्ति बदल गई, उनसे मेरे संबंध टूट गए, वो कहीं दूर चली गई, वो नष्ट हो गई, अब उसकी ही याद मुझे दुख देने वाली महसूस होती। कोई चीज है, बहुत सुंदर है, मुझे प्रिय है, वो चीज कहीं गुम हो जाए, टूट जाए, कोई चुरा ले, अब उसकी ही याद मुझे दुख देने वाली महसूस होती। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति की याद, कोई भी वस्तु की याद, क्योंकि व्यक्ति और वस्तु दोनों परिवर्तनशील है, नाशवंत है, इसलिए आखिरकार भी दुख देने वाली ही है। तो क्यों नहीं जो सदा सुख देने वाले हैं, आत्मा के कल्याणकारी अविनाशी पिता है, जो ऑलमाइटी है, जिसकी याद से बुद्धि शुद्ध होती है, आत्मा शक्तिशाली बनती है, क्यों नहीं हम उसकी याद में अपना मन और बुद्धि लगाएं? तो उस याद के लिए इवन मैं इतनी सहज ये विधि है बताना चाहूंगी कि इसमें हमें कोई चित्र या फोटो की भी आवश्यकता नहीं। लोग सोचते हैं कि हम मन कहां लगाएं, सामने क्या रखें, क्या हम परमात्मा की प्रतिमा रखें, इष्ट देव के फोटो रखें या गुरु का फोटो रखें, या हम दीवा जलाएं, बिंदु पर मन लगाएं, हम मन कहां लगाएं? क्योंकि अब तक हमने जो परमात्मा को याद करने के प्रयास किए हैं, उसमें कोई ना कोई चित्र, फोटो, मूर्ति का आधार लिया है। राजयोग में हमें कोई चित्रों का आधार नहीं, ये चित्र समझाने के लिए है, हमें इनसे योग लगाना नहीं। ये जो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो समझाने के लिए है कि परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, हमें इनसे योग नहीं लगाना, ये तो प्रतीक है। हमें योग कहां लगाना है, हमें अपने मन बुद्धि कहां लगाने हैं? डायरेक्ट परमात्मा से लगाते, न कि परमात्मा के चित्र से, न कि परमात्मा के प्रतीक से। हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाते, इसलिए हम कहेंगे कि वो जो है, जैसा है और जहां रहते हैं वहां मन लगाना। वो जो है क्या है? है वो महिमा अब हम जान चुके हैं कि वो हमारे पिता है, शिक्षक है, साथी है, सर्वस्व है, वो सर्वशक्तिमान है, दिव्य बुद्धि देने वाले हैं, वो सुखदाता है, वो मेरे अविनाशी साथी है, वो क्या है वो अब हम जानते हैं। और जैसे हैं, कैसे हैं? अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, जैसी मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और जहां रहते हैं उस परम धाम में हमें बुद्धि से जाना है और उस पिता को याद करना है। इसलिए शरीर से हम यहां बैठते हैं, हमें बुद्धि से अपने असली घर शांति धाम में जाना है। जैसे आज आप सबको जाना है तो बुद्धि अब जहां जाना है वहां जाने लगी है ना, हाँ? क्योंकि प्रोग्राम मिला है कि आज जाना है, तो बुद्धि का लंगर अब यहां से उठ गया है और जहां जाना है वहां फोकस हो रहा है। तो हमारा भी असली घर कौन सा है? पिता परमात्मा का भी असली निवास स्थान कौन सा है? परम धाम है। तो शरीर से हम यहां हैं, मन और बुद्धि से हम अपने असली घर शांति धाम में जाते हैं, और मन की आंख से परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देखते हैं। हम समझ चुके हैं कि परमात्मा कोई भौतिक प्राकृतिक चीज नहीं है, कोई शरीरधारी हमारी तरह नहीं है जो हम इन चर्म चक्षुओं से देख सके। हमें ज्ञान के तीसरे नेत्र से उसे देखना है, मन की आंख से विजुअलाइज करना है। इसलिए मन की आंख से परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देखना है और बुद्धि से उसको अंडरस्टैंड करना है, रियलाइज करना है, उनका चिंतन करना है, उसको योग कहते हैं। तो जो मनुष्य की याद के आधार है वो ही परमात्मा की याद के भी आधार। हम अपने मित्र संबंधियों को, स्नेहियों को, प्रेमियों को याद करते हैं, क्या उनका फोटो हो तो याद आए, ऐसा है क्या? नहीं, जिसको हमने जान लिया है, पहचान लिया है, अपने अंतर मन में छाप लिया है, उसकी बाह्य प्रतिमा फोटो की आवश्यकता है? नहीं। हम कहते हैं कि भाई वो तो मेरे मन में ही छपे हुए हैं, मेरे मन की आंखों के सामने ही है, शरीर से चाहे कहीं भी हो। तो जब देह के मित्र संबंधियों को याद करने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं, कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं, उसके लिए हम कहते हैं कि आज तो मेरा मन उसकी ही याद में था, आज तो सारा दिन मुझे उसकी ही याद आती रही। तो परमात्मा की याद के लिए हम साधन क्यों आधार रूप में ले? उसकी याद के लिए भी हम मन लगाए ना, बुद्धि लगाए ना, क्यों हम साधन चाहते? और उसकी याद के लिए हम गिनती क्यों करते हैं? भाई इतनी माला चार बार फेरी, मंत्र इतनी बार रटा, उसे भी सारा दिन हम याद करें, निरंतर याद करें ना। इसलिए हमें मन की आंख से देखना है और उससे मन ही मन बुद्धि पूर्वक उसे याद करना है। इसलिए हम कहते हैं कि राजयोग के तीन आधार है। सबसे पहला है सही ज्ञान, जो पूर्व दो तीन सत्र में आप सबको बताया गया है कि हम कौन हैं, वो कौन है, हम यथार्थ रूप से उसे जान दें। बिगर सही ज्ञान योग क्या करेंगे? योग कोई क्रिया नहीं है जो हम सीख ले घंटा आधा घंटा करते रहे। योग माना याद करना, और याद हमें किसकी आएगी? जिसको हम जानते हो, पहचानते हो। दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, क्या सबकी याद हमें आती है? कल आप आबू घूमने गए, आपको मार्केट में कई लोग मिले, क्या सबको देखकर सबकी याद हमें आई? नहीं। हमें कौन याद आते हैं? जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं। तो परमात्मा की याद का पहला आधार है सही परिचय, सही ज्ञान। मैं कौन हूं और वो कौन है? इसलिए प्रथम दो सत्र में वो सत्य परिचय आप सबको दिया गया। अब उस परिचय के आधार से, जिसको मैंने कहा ज्ञान के नेत्र से, अब उस पिता को मैं याद करना चाहूं तो मैं कर सकती हूं ना, क्योंकि मुझे क्लैरिटी है कि परमात्मा कौन है, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, उनके मेरे संबंध क्या है, वो मुझे स्पष्टता है, मैं याद कर सकती। लेकिन जैसा हम सबके जीवन में अनुभव है कि परिचय हमारा अनेकों से होता रहता है, लेकिन उनसे अगर हमारा रेगुलर मिलना नहीं होता है, उनसे हमारा कोई संबंध संपर्क नहीं है, तो थोड़े समय के बाद हम भूल भी जाते हैं। इसलिए हमें कौन याद आते हैं? ऑब्जर्व करो अपने मन को, हमें किसकी याद आती? जिनसे हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, जिनसे हमारा रोज का उठना बैठना काम करना जीना है, हमें उन संबंधों की याद आती है ना? तो परमात्मा की याद हमें सहज आती रहे, उसके लिए कौन सी विधि अपनाएंगे? कौन सी विधि अपनाएंगे? उनसे संबंध जोड़ो। आपने कहा ना कि जिनसे हमारे संबंध है उनकी हमें अधिकतर याद आती है, उनके बारे में विचार चलते हैं ना, जिनसे हम रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, उनके कारोबार के, उनके संबंध के विचार आते हैं ना। तो परमात्मा का सही परिचय हमें मिल गया है, लेकिन अब उसकी याद मुझे आती रहे सहज ही, उसकी विधि है उनसे संबंध जोड़ना, परमात्मा को अपना बना लेना। इसलिए भक्ति में हम सिर्फ मुख से गाते हैं, मुख से वर्णन करते हैं, त्वमेव माता च पितात्वमेव। तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब हमें मुख से केवल नहीं गाना है, मुख से वर्णन करने की जरूरत नहीं है, हमें मन से निश्चय करने की आवश्यकता है। हमें दिल से ये स्वीकार करने की आवश्यकता है कि परमात्मा ही मेरा सच्चा, असली, अविनाशी माता पिता बंधु गुरु सखा साथी सर्वस्व है। हमें ये स्पष्ट हो जाए कि ये सब देह के मित्र संबंधी हैं, जो एक जन्म के हैं, विनाशी है। ये तो इस दुनिया में आने के बाद मिले हुए हैं, लेकिन मुझ आत्मा के असली अविनाशी मेरे सर्व संबंधी कौन है? वो पिता परमात्मा है ना। तो जीवन के सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ दो, उसे अपना पिता बना लो, मित्र बना लो, साथी बना लो, सखा बना लो, शिक्षक बना लो, वो ही मेरा सब कुछ है। तो जब जीवन के सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ते हैं, तो अब आप बताइए, फिर हमें हर घड़ी, हर क्षण, हर स्थान, हर कार्य में, हर आवश्यकता में कौन याद आएगा? कौन याद आएगा? वो ही तो याद आएगा। इसलिए संबंध जोड़ो, केवल मानो नहीं, केवल जानो नहीं, उसे अपना बनाओ, उनसे संबंध जोड़ो। और तीसरी बात, जैसे भाई ने कहा कि संबंध अनेक है, मित्र संबंधी अनेक है, लेकिन इन अनेक अनेक मित्र संबंधियों में भी बहुत बार बार मुझे कौन याद आता है? जिनसे प्यार है। तो जितना दिल का सच्चा प्यार परमात्मा से होगा, उतनी याद आएगी। मन नहीं लगता है, इसका अर्थ यही हुआ कि हमें परमात्मा से प्यार नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं, कोई मतलब से याद करते हैं, कोई भय से याद करते हैं, कोई जस्ट करना चाहिए इसलिए करते नहीं, दिल का सच्चा प्यार उस पिता से। तो हमें याद करना नहीं पड़ेगा, केवल हमें उसकी याद आएगी नहीं, लेकिन उसकी याद हमें सताएगी। हम उसे भूल नहीं सकेंगे, क्योंकि उसकी याद से ही मुझे प्राप्ति है। इसलिए दिल का सच्चा प्यार परमात्मा से हो, तो एक ही शब्द में हम कह सकते हैं, याद का आधार है प्यार। जितना प्यार होगा, उतनी याद आएंगी परमात्मा की। प्यार से मन एकाग्र होता है। तो जैसे जैसे आप ज्ञान सुनते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, और जितना अनन्य प्यार परमात्मा से होता जाएगा, उतना योग लगता जाएगा, सहज एकाग्रता आएगी। कोई हठस से एकाग्र होने की बात नहीं है, हम नेचुरल योगी बन सकेंगे। फिर आप उठते बैठते चलते फिरते कोई भी कार्य करते, हमारा अंदर का लिंक उस पिता से जुड़ा रहे, उसकी याद ही प्राप्ति कराती है। मांगने की बात नहीं, प्रार्थना करने की बात नहीं रहेगी, उसकी याद ही प्राप्ति कराती, उसकी स्मृति ही समर्थी बन जाती। और जब हर क्षण वो ही मेरा साथी है तो बुद्धि भी शुद्ध, मन भी शांत, कर्म भी श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए राजयोग की विधि इतनी नेचुरल है। कर्म करते भी योगी बन सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे उस अनुभूति की स्थिति पर आप पहुंचते जाएंगे। हमारा मन शुद्ध शांत होता जाएगा, बुद्धि हमारी दिव्य बनती जाएगी, जिसके कारण हम राइट डिसीजन ले सकेंगे, उलझेंगे नहीं, क्योंकि बुद्धि की लाइन क्लियर है, माइंड क्लीन है। तो हम यथार्थ परख सकेंगे और राइट डिसीजन ले सकेंगे। इस चित्र में वही बताया है कि इस योग अभ्यास के द्वारा हमारी आत्मिक शक्तियों का विकास होता है, उसमें परख शक्ति, निर्णय शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, सहन शक्ति, बुद्धि को समेटने की शक्ति, पावर टू विड्रो, जब चाहे न्यारे हो जाए, जब चाहे इन्वॉल्व हो जाए, पावर टू कॉपरेट एंड पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति आती। और जब ये आत्मिक शक्तियां हैं तो जो जीवन, जो परिस्थिति, जो बातें आज हमें पार करना मुश्किल लगती है वो हमें सहज हो जाती, क्योंकि आत्मा एम्पावर हो गई। शरीर कमजोर है तो मुझे दो कदम चलना भी मुश्किल लगेगा, मैं हेल्थी होंगी तो 2 किलोमीटर भी चल जाऊंगी। तो आत्मा कमजोर है, मन बुद्धि में ताकत है नहीं, इसलिए वो परिस्थितियां मुश्किल लगती। कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ कर देता है, कुछ हो जाता है, जीवन है माना, बातें तो आएंगी ही, तो हम मुंझ जाते हैं। लेकिन जैसे हम योग अभ्यास करते हैं, नित्य ज्ञान समझते हैं, आत्मा एम्पावर होती है, तो वही बातें हमें आसान लगती है, सहज पार कर सकते हैं। और जब विल पावर है तो मैं वैल्यूज को भी, दिव्य गुणों को भी धारण कर सकूंगी। आज हम सब समझते हैं कि हमें सबके साथ प्यार से चलना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए, लेकिन फिर हम कहते हैं क्या करें, स्वभाव ऐसा है गुस्सा आ जाता है, आदत ऐसी है मैं बोल देता हूं, मेरे से ऐसा हो जाता है। मिन सम समझते हैं, चाहते हैं, धारण भी करते हैं, लेकिन शक्तिशाली नहीं है। इसलिए जब बातें आती है, परिस्थितियां आती है, तो हमारे वो वैल्यूज चले जाते हैं, वही अवगुण बुरे संस्कार फिर आ जाते हैं। मेरा हाथ कमजोर होगा तो जो चीज पकड़ूंगी वो भी गिर जाएगी, पकड़ नहीं सकूंगी क्योंकि हाथ में ही ताकत नहीं। तो गुणों को जीवन में धारण करने वाली मैं आत्मा हूं, मेरे मन बुद्धि कमजोर है, मैं आत्मा शुद्ध और शक्तिशाली नहीं हूं, तो वो गुण भी स्थाई धारण नहीं हो। फिर नेचुरल दिव्य गुण भी जीवन में आएंगे, विकारी वृत्तियां अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये विकार क्या है, आत्मा की कमजोरियां। जब गुण और शक्ति नहीं रहते हैं, सही ज्ञान नहीं रहता है, तो ये विकार नेगेटिविटी जिसको हम कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस ईर्ष्या वैर द्वेष, ये भावनाएं डेवलप होती है, फिर वो विकारी वृत्तियां भी चेंज हो जाती और ऑटोमेटिक हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाता है, हमारा हर कर्म श्रेष्ठ बन जाता है। तो आज आप सभी को अपने अपने कर्म क्षेत्र में जाना है। हम अपने हर कर्म को यथार्थ कर सके उसके लिए राजयोग हमें बहुत उपयोगी है। आज मैं यहां हूं, मैंने ये सेवा का क्षेत्र चुना है, मैंने ये सफेद वस्त्र पहने हैं, मैंने जीवन का ये लक्ष्य बनाया है, अगर उसके अनुरूप मेरी मन की स्थिति नहीं है तो मैं न इस क्षेत्र को न्याय दे सकूंगी, न अपना काम ठीक से कर सकूंगी। जब मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ये एम है, तो जो भी व्यर्थ विचार है, वेस्ट थॉट्स है, वेस्ट इंटरेस्ट है, वो व्यर्थ रस मुझे समेट लेने चाहिए। मैं यहां हूं, सफेद कपड़े मैंने पहने हैं और इच्छाएं मेरी अगर सांसारिक है तो मैं शरीर से तो यहां रहूंगी, लेकिन मेंटली इमोशनली मैं अवेलेबल नहीं हो सकूंगी क्योंकि मेरी इच्छाएं दूसरी है, तो मैं न्याय नहीं दे सकूंगी। राजयोग से हमारे में पावर टू पैक अप, व्यर्थ इच्छाओं को, व्यर्थ रसों को समेटने की शक्ति आती। तो मैं जहां हूं, जिस कार्य के लिए हूं, मैं उसमें फुल्ली अवेलेबल रह सकूंगी, तभी तो मैं एवर रेडी बन सकूंगी। ऑटोमेटिक मेरे हर कर्म यथार्थ हो गए। आज आपका कर्म फिलोसॉफी का भी टॉपिक है, कर्म का एक सर्व सामान्य सिद्धांत। हम सभी जानते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, यह हम सब भारतवासी जानते हैं, क्योंकि इस कर्म क्षेत्र का नियम है कि यहां जैसा कर्म रूपी बीज हम बोएंगे वैसा फल हम पाएंगे। अगर मैं अपने जीवन के अंदर दुख और अशांति के फल चख रही हूं तो अंडरस्टूड है कि जाने अनजाने मेरे द्वारा गलत कर्म के बीज बोए जा रहे हैं, तब तो मैं दुख शांति का फल चख रही। तो मुझे अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि यहां इस कर्म क्षेत्र का नियम है, हम जो देंगे वो ही हमें मिलेगा। हम सुख देंगे हमें सुख मिलेगा, हम प्यार देंगे हमें प्यार मिलेगा, हम रिस्पेक्ट देंगे हमें रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर हम दुख देंगे तो दुख ही मिलेगा, जो देंगे वो मिलेगा। और हर कर्म रूपी बीज की अपनी शक्ति है। जैसे उस खेत में बीज हम बोते हैं, हर बीज का अपना जर्मिनेटिव पावर है, हर बीज का अपना जर्मिनेटिव ड्यूरेशन। आप टमाटर के, मिर्ची के बीज बोते हैं, 3-4 मास में ही पौधा उग जाएगा, फल आ जाएंगे और फल देके वो पौधा खत्म भी हो जाएगा। लेकिन कुछ बीज है जिसको पनपने में टाइम लगता है, वो 6 मास, 1 मास, 2 मास के बाद फल देते हैं, लेकिन फिर वर्ष 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 फल देते ही रहते। तो हर बीज का अपनी शक्ति है पनपने की, हर बीज का फलित होने का अपना समय, टाइम पीरियड है। कर्म के बीज के लिए भी ऐसा है। कोई कर्म तुरंत ही उसका फल देते हैं, कुछ कर्म के फल हम बाद में भोगते हैं, लेकिन फल जो करता है उसे भोगना जरूर है, चाहे अभी या बाद में, अभी या अंत में, इस जन्म में या अगले जन्म में। कर्मों का हिसाब हमें चुकाना जरूर होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि ये बुरा करके भी आगे बढ़ गए, गलत करके, बेईमानी से, झूठ बोल के धनवान हो गए। हम सीधे साधे हैं, ईमानदार हैं, हम वैसे के वैसे रहे। और वो देख के लोग सोचते हैं कि हम भी ऐसा करें, लेकिन नहीं। थोड़ा धीरज और हिम्मत से हमें सोचने की बात है कि जो गलत तरीके से कमाता है उसका गलत रास्ते पर ही जाता है, गलत तरीके से आगे बढ़े हुए उनका अंत भी गलत ही होता है। इसलिए हमें अपनी सत्यता या अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ना। कई बार हम खुद गलत नहीं करते हैं लेकिन करवाते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं, दूसरों को उकसाते हैं, तो उसमें भी तो हमारा हिसाब बनेगा कि नहीं बनेगा? उसमें भी हमारा हिसाब जरूर बनेगा, क्योंकि करने के लिए हमने उसको प्रेरित किया। करने वाला तो हिसाब भोगेगा ही, लेकिन करवाने वाला भी तो मिस नहीं रहेगा ना। क्योंकि हमारा इंटेंशन तो गलत हो गया ना, हमने दूसरों को प्रेरित किया, उकसाया, कराया, तो उसका भी कराना भी तो करना है ना एक प्रकार से। कई बार हम विधि अच्छी अपनाते हैं, इंटेंशन गलत होता है। बोलेंगे प्यार से लेकिन अंदर में जहर होता है। आज के पढ़े लिखे हैं तो शिष्टाचार आया है हमारे में, लेकिन भावनाएं अंदर गलत होती, उसका भी फल मिलता है। इसलिए हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, हमारा सूक्ष्म भाव, स्वभाव, कर्म, व्यवहार, हर चीज का हिसाब बनता है। तब परमात्मा कहते हैं कि हमें अंदर से टोटली शुद्ध होना, अपने मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन, स्मृति, हर चीज को यथार्थ बनाना है। टोटल पर्सनालिटी हमें श्रेष्ठ बनानी। और आप अनुभव करेंगे कि जैसे जैसे हम बनते जाएंगे, अपने आप बुरे कर्मों से हमारी पर्सनालिटी ही ऐसी बन जाएगी कि हमें कोई गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं करेगा। और ये हम समझ लें कि परमात्मा हमें सही कर्म किसको कहते हैं, सही कर्म हम कैसे करते हैं, कर सकते हैं, उसका ज्ञान देते हैं। बुरे कर्मों का प्रभाव जो संस्कार के रूप में आत्मा में है, वो कैसे खत्म कर सके, वो विधि सिखाते हैं, लेकिन करना तो हमें ही है ना। इसलिए कहा है वेदों में भी कि हमें अपने कर्म के बल से अपनी जीवन नैया को पार करना। कर्म शुद्ध नहीं है तो वेद भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा हमें सही ज्ञान देते हैं ताकि हमारे में वो परख शक्ति आए कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उसकी याद योग सिखाते हैं, उस योग अभ्यास से वो विल पावर डेवलप होता है ताकि जो करना चाहिए वो ही कर सके, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं ही करे। हम उन प्रलोभनों में खींच न जाएं और सत्य से हमारी वफादारी न जाए, वो विल पावर हमें राजयोग से प्राप्त होती। योगी का अर्थ ही है जो करना चाहिए वो करने करें, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करें, उसको योगी कहते। वो विल पावर, वो शक्ति हमारे में आ जाएगी। हमारी आत्मस्थिति इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि हम अपने कर्मों का, संकल्पों का सही प्रभाव सब पर डाल सकेंगे। हम परिस्थिति को चेंज कर सकेंगे, वायुमंडल को बदल सकेंगे। आज हम कमजोर है इसलिए हम कहते हैं कि बेंजी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, सब ऐसे करते हैं, जमाना ऐसा है इसलिए हम ऐसा करते, लोग ऐसे हैं इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। लेकिन फिर हमारे अपने में वो शक्ति आ जाएगी जो हम अपनी अच्छाई से सबको बदल सकेंगे, वायुमंडल को भी चेंज कर सकेंगे, स्थान के वातावरण को भी बदल सकेंगे। और कैसे भी दुनिया में, वातावरण में, संग में रहते हुए हम अपने चरित्र को सेफ रख सकेंगे। आ शक्ति वही तो हमें चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि विश्व पर वो कराने वाला है, लेकिन निमित्त करना हमें है। हमें अपने कर्म के बल से स्वयं के जीवन को और संसार को बदलना है। कई बार हम खुद नहीं करते हैं, करना चाहते नहीं हैं और नाम परमात्मा का दे देते हैं। हमें अनुभव है, हम कई बार भाई बहनों को कहते हैं कि आइए आप भी योगी बनिए, पवित्र बनिए, तो वो कहते हैं भगवान की इच्छा होगी तो हम जरूर बनेंगे। भगवान की इच्छा तो है ही ना कि हम पवित्र बने, महान बने, श्रेष्ठ बने, लेकिन हमारी इच्छा शक्तिशाली नहीं होती है, इसलिए हम नाम भगवान का ले लेते हैं कि उनकी इच्छा होगी तो हम आएंगे। होता हमारी इच्छा नहीं है, इसलिए फिर जवाब देते हैं हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो दादी कहती है, जो कहते हैं कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, माना कमजोर, दृढ़ता से निर्णय नहीं। परमात्मा की कृपा है ही, वो है ही कृपालु, दयालु, उसकी कृपा है ही। हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर अपने पर कृपा करनी। हम हिम्मत करते हैं, वो अनेक गुना मदद देते हैं सही कार्य करने में। विश्व की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कई बार लोग भगवान पर नाराज हो जाते और वो कहते हैं काहे को ऐसी दुनिया बनाई। वो गीत गाते हैं ना, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए। अब भगवान पर नाराज हो जाते हैं कि आपने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें पापाचार है, भ्रष्टाचार है, वैर है, वैमनस्य है, ऐसी दुनिया क्यों बनाई। परमात्मा ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई, उसने तो बहुत अच्छी बनाई थी, उसने तो अपने जैसा हर इंसान बनाया। आज हर क्रिएटर, हर क्रिएशन कैसी करना चाहता है, हर एक चाहेगा मेरी कृति उत्तम हो। एक कलाकार हो, शिल्पकार हो, चित्रकार हो, हर एक अपनी रचना उत्तम बनाना चाहते। तो परमात्मा जो है ही ऊंचे से ऊंचा, वो ऐसी भ्रष्ट, दुखी, अशांत दुनिया थोड़ी बनाएगा। आपके बाप दादा के बाप दादा के बाप दादा ने अपने जमाने में कोई मकान बनाया हो और आज वो मकान पुराना, जर्जरी, भूत, टूटा हुआ हो जाए, तो आप ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हमारे बाप दादा के बाप दादा ने ऐसा कैसा मकान बनाया। भाई उसने तो अच्छा ही बनाया था, अब आपके समय में वो पुराना हो गया। तो परमात्मा ने भी अच्छी ही दुनिया बनाई थी, जिसको ही हम स्वर्ग, सतयुग, वैकुंठ, पैराडाइज, हेविन, बहिष्ट, गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। ये विश्व ही स्वर्ग था, हर इंसान ही देवता था। हम समझते हैं कि देवताएं कोई आकाश में रहते हैं और असुर पाताल में रहते हैं, हम तो इस मृत्यु लोक के मानवी हैं। इसलिए हमें रियलाइजेशन ही नहीं है कि हम अच्छे थे और बुरे हो गए। वास्तव में परमात्मा ने ऐसी सतयुगी स्वर्गीय दुनिया ही बनाई थी। हम हर इंसान ही देवता थे, तब तो हम गाते हैं, उस गीत में क्या गाते हैं? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। उसी गीत में आता है, जहां हर बालक एक मोहन था, राधा एक एक बाला। ये वो देश है जहां का हर बच्चा कृष्ण जैसा, हर बाला श्री राधे जैसी थी। तब तो इसे देव भूमि कहते। तो वो देव हम ही थे, दिव्य गुणों से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। और जब हम देवता थे तो ये विश्व भी स्वर्ग था। आज जन्म लेते लेते समय और प्रकृति के प्रभाव में आकर हर चीज अपनी शक्ति गंवाती। ये नियम है संसार का, परिवर्तन संसार का नियम है। हर चीज नई से पुरानी, पुरानी से नई होती। ऐसे हम आत्माएं भी जो संपूर्ण निर्विकारी, दिव्य गुणों से संपन्न थी, जन्म लेते लेते समय और प्रकृति के प्रभाव में आकर हम अपनी पवित्रता और दिव्य गुण गंवा देते हैं, तो हम साधारण इंसान बन जाते और देहभान में आकर विकारों के वश जब हम पाप कर्म करते हैं, अवगुणों के शिकार हो जाते हैं, तो हम ही असुर बन जाते और ये विश्व नरक बन जाता है। इसलिए नरक कोई पाताल में नहीं है, असुर कोई अलग योनि के प्राणी नहीं है। हम समझते हैं कि असुर, राक्षस, दैत्य माना कोई बड़ी बड़ी आंख वाले, सिंह वाले, भयानक कोई अलग योनि के प्राणी है। वास्तव में हम ही असुर बन गए हैं। जब हम क्रोध करते हैं, एक दो के प्रति वैर दिखाते हैं, द्वेष करते हैं, अहम में आते हैं, तो हम कैसे दिखते हैं? उस समय आईने में अपना मुंह देखा है? हम ही राक्षस जैसे दिखते हैं। इसलिए हमें ही फिर से देवता बनना है। अगर इस विश्व को हम सुखमय बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत कहां से करेंगे? कहां से करेंगे? खुद से, खुद से। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आपको निमित्त बनकर अपने कर्म के बल से, अपनी अच्छाइयों को एक्टिव करके फिर से इस विश्व को स्वर्ग बनाना। इसलिए हम तो यही कहेंगे, आप सभी ऐसी विशेष आत्माएं हैं, ऐसी महान आत्माएं हैं। जब सारा विश्व व्यक्तिगत स्वार्थ में है, आपने जीवन का वो लक्ष्य अपनाया है जो आप एक देश के प्रति अपने जीवन को कुर्बान करते। इतने ऊंचे लक्ष्य का फल भी, इतना ऊंचा आपको प्राप्त होना है, हो भी रहा। हमें अनुभव है, आज हमने भी अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित किया है। एक संसार को पवित्र और श्रेष्ठ बनाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित किया है, तो हमें श्रेष्ठ कर्म का फल अभी ही मिलता है। इसलिए हमें पूरी हिम्मत से, दिल से, पूरा जिगर से वो धारणाएं करनी है। चाहे दुनिया माने या न माने, हम अपने में से चलित नहीं होते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है, यथार्थ है। तो सारा विश्व नहीं माने तो भी मेरा निश्चय नहीं हिलेगा। ये दृढ़ता और खुशी। पर हम ये जरूर चाहें कि हमारा व्यक्तिगत जीवन भी इतना श्रेष्ठ, शुद्ध और दिव्य हो, जो हमें अपने जीवन से भी सेटिस्फेक्शन हो। आपके कार्य से तो सेटिस्फेक्शन आपको है ही, क्योंकि एक श्रेष्ठ कार्य अपनाकर आप और हम चल रहे हैं, जिसमें हमारा अपना, परिवार का, समाज का, देश का और विश्व का कल्याण है। लेकिन हमारे अपनी आदतें भी, हमारा आहार विहार भी, हमारा स्वभाव संस्कार भी हम ज्ञान और योग की शक्ति से इतना शुद्ध बनाएं जो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बन जाए। तो हमें संतुष्टता और ऑटोमेटिक हमारे चेहरे पर और जीवन में प्रसन्नता आएगी। तो आज आप सभी अपने अपने कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं, शिव बाबा को अपना साथी बनाकर, उसके ज्ञान और योग की शक्ति अपने में धारण करके आप जाएंगे और सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बन जाएगा। हम जिएंगे या जाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हम हैं तो भी श्रेष्ठ कर रहे हैं, जहां जाएंगे वहां भी श्रेष्ठ करेंगे। ओम शांति।